ओम शांति। अब हम सभी 26 जनवरी 1970 की अव्यक्त वाणी बहुत एकाग्रता के साथ सुनेंगे। हम सब अनुभव करेंगे कि हम पांडव भवन में बाबा के कमरे में बैठे बाबा की मधुर वाणी सुन रहे हैं, जिसका शीर्षक है याद के यात्रा की संपूर्ण स्टेज। याद के यात्रा की संपूर्ण स्टेज। बाप दादा भी यहाँ बैठे हैं और आप भी बैठे हो, लेकिन बाप दादा और आप में क्या अंतर है? पहले भी साकार रूप में यहाँ बैठते थे, लेकिन अब जब बैठते हैं तो क्या फील होता है? जैसे साकार रूप में बाप के लिए समझते थे कि लोन ले आए हैं, उसी समान अनुभव अभी होता है। अभी आते हैं मेहमान बनकर। यूं तो आप सभी भी अपने को मेहमान समझते हो, लेकिन आपके और बाप के समझने में फर्क है। मेहमान उसको कहा जाता है जो आता है और जाता है। अभी आते हैं फिर जाने के लिए। यह था बुद्धि योग का अनुभव, यह है प्रैक्टिकल अनुभव। दूसरे शरीर में प्रवेश हो कैसे कर्तव्य करना होता, यह अनुभव बाप के समान करना है। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों की बहुत कुछ समान स्थिति होती जाएगी। आप लोग भी ऐसे अनुभव करेंगे। सचमुच जैसे लोन लिया हुआ है, कर्तव्य के लिए मेहमान है। जब तक अपने को मेहमान नहीं समझते हो, तब तक न्यारी अवस्था नहीं हो सकती है। बाबा कहते जो ज्यादा न्यारी अवस्था में रहते हैं, उनकी स्थिति में विशेषता क्या होती है? चलन से उपराम स्थिति का औरों को अनुभव होता है। जितना ऊपर स्थिति जाएगी, उतना बाबा कहते उपराम होते जाएंगे। शरीर में होते हुए भी उपराम अवस्था तक पहुंचना है। बिल्कुल देह और देही अलग महसूस हो, उसको कहा जाता है याद के यात्रा की संपूर्ण स्टेज। वायोग की प्रैक्टिकल सिद्धि। बात करते करते जैसे न्यारापन खींचे, बात सुनते भी जैसे कि सुनते नहीं, ऐसी भासना बाबा कहते औरों को भी आए। ऐसी स्थिति की स्टेज को कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। कर्मातीत अर्थात देह के बंधन से मुक्त। कर्म कर रहे हैं, लेकिन उनके कर्मों का खाता नहीं बनेगा। जैसे कि न्यारे रहेंगे, कोई अटैचमेंट नहीं होगा। कर्म करने वाला अलग और कर्म अलग है। ऐसे अनुभव दिन प्रतिदिन होता जाएगा। इस अवस्था में जास्ती बुद्धि चलाने की भी आवश्यकता नहीं है। संकल्प उठा और जो होना है वही होगा। बाबा कहते ऐसी स्थिति में सभी को आना होगा। मूल वतन जाने के पहले वाया सूक्ष्म वतन जाएंगे, वहाँ सभी को आकर मिलना है, फिर अपने घर चलकर फिर अपने राज्य में आ जाएंगे। जैसे साकार वतन में मेला हुआ वैसे ही सूक्ष्म वतन में होगा। बाबा कहते वह फरिश्तों का मेला नजदीक है। कहानियां बताते हैं ना, फरिश्ते आपस में मिलते थे, रूह रूहों से बात करते थे, वही अनुभव करेंगे। तो जो कहानियां गाई हुई हैं, उसका प्रैक्टिकल में अनुभव होगा। उसी मेले के दिनों का इंतजार है। बाबा कहते अभी सर्विस के निमित्त हैं, सभी कुछ भूले हुए बैठे हैं। उस अव्यक्त स्थिति में मन और तन व्यक्त देश में है, ऐसे अनुभव होता है। अपने को कहाँ के निवासी समझते हो? परम धाम के निवासी समझते हो? बाबा कहते यह कितना समय याद रहती है? यह एक ही बात याद रहे कि हम परम धाम निवासी आत्मा इस व्यक्त देश में ईश्वरीय कर्तव्य करने के निमित्त आए हुए हैं। मधुबन में आकर के विशेष कौन सा गुण लिया है? बाबा कहते मधुबन का विशेष गुण है मधुरता। मधु अर्थात मधुरता, स्नेही। जितना स्नेही होंगे उतना बेहद का वैराग्य होगा। यह है मधुबन का अर्थ, अति स्नेही और इतना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति। अगर मधुबन के विशेष गुण जीवन में धारण करके जाएं, तो सहजी संपूर्ण बन सकते हैं। फिर जो रूहानी टीचर्स बनना चाहिए तो नंबर वन की टीचर बन सकते हो, क्योंकि जैसी अपनी धारणा होगी वैसे औरों को अनुभव में ला सकेंगे। इन दोनों गुणों की बाबा कहते अपने में धारणा करनी है। मधुबन की लकीर से बाहर निकलने के पहले अपने में पूरी रीति यह भर कर जाना। एक स्नेह से दूसरा बेहद के वैराग्य वृत्ति से कोई भी परिस्थितियों को सहज ही सामना करेंगे। सफलता के सितारे बनने के लिए बाबा कहते यह दो गुण मुख्य मधुबन की सौगात ले जाने हैं। एक स्नेह, दूसरा बेहद की वैराग्य वृत्ति। जैसे कहाँ भी जाना होता है तो वहाँ जाते ही पूछा जाता है कि यहाँ की विशेष चीज क्या है। जो प्रसिद्ध विशेष चीज होती है वह जरूर साथ में ले जाते हैं। तो यहाँ मधुबन के दो विशेष गुण अपने साथ ले जाना। जैसे स्थूल मधु ले जाते हो ना, वैसे यह सूक्ष्म मधुरता की मधु ले जाना। बाबा कहते फिर सफलता ही सफलता है, असफलता आपके जीवन से मिट जाएगी। सफलता का सितारा अपने मस्तक में चमकते हुए देखेंगे। बाबा पूछ रहे हैं तुम सफलता के सितारे हो वा पुरुषार्थ के सितारे हो, क्या समझते हो? सफलता के सितारे हो। जैसा लक्ष्य होता है वैसा ही लक्षण होता है। अगर अब तक यही सोचते रहेंगे कि हम पुरुषार्थी हैं, तो ऐसा समझने से कई छोटी छोटी गलतियां अपने को माफ कर देते हो। समझते हो हम तो पुरुषार्थी हैं, इसलिए बाबा कहते अब पुरुषार्थी नहीं लेकिन सफलता का स्वरूप बनना है। कहां तक पुरुषार्थ में रहेंगे? जब स्वयं सफलता स्वरूप बनेंगे तब दूसरी आत्माओं को भी सफलता का मार्ग बता सकेंगे। अगर खुद ही अंत तक पुरुषार्थी चलते रहेंगे तो संगम के प्रारब्ध का अनुभव बाबा पूछते कब करेंगे? क्या यह जीवन पुरुषार्थी ही रहेंगे? इस संगम युग की प्रारब्ध प्रत्यक्ष रूप में नहीं प्राप्त करेंगे। संगम के पुरुषार्थ का फल क्या? सफलता। तो सफलता स्वरूप भी निश्चय करने से बाबा कहते होती रहेगी। जब यह समझेंगे कि मैं हूँ ही सफलता का सितारा, तो असफलता कैसे आ सकती है? सर्वशक्तिवान की संतान कोई कार्य में असफल नहीं हो सकती। अपने मस्तक में विजय का सितारा देखते हो बाबा पूछते या देखेंगे? विजय तो निश्चित है ही ना? विजय अर्थात सफलता। अभी समय बदल रहा है, जब समय बदल गया तो अपने पुरुषार्थ को भी बदलेंगे ना। अब बाप ने सफलता का रूप दिखला दिया तो बच्चे भी रूप में व्यक्त देह में होते सफलता का रूप नहीं दिखाएंगे। अपने को सदैव सफलता का मूर्त ही समझो। अब कहते निश्चय को विजय कहा जाता है। जैसा विश्वास रखा जाता है वैसा ही कर्म होता है। निश्चय में कमी होती तो कर्म में भी कमी हो जाएगी। स्मृति सर्वशक्तिवान है, स्मृति शक्तिवान है, तो स्थिति और कर्म भी बाबा कहते शक्तिवान होंगे। इसलिए कभी भी अपनी स्मृति को कमजोर नहीं रखना। शक्ति दल और पांडव कब असफल हो सकते हैं क्या? अपनी कल्प पहले वाली बात याद है कि पांडवों ने क्या किया था? बाबा कहते विजयी बने थे। तो अब अपने स्मृति को श्रेष्ठ बनाओ। अब संगम पर है विजय का तिलक, फिर इस विजय के तिलक से राज तिलक मिलेगा। संगम पर है विजय का तिलक और इस विजय के तिलक से राज तिलक मिलेगा। इस विजय के तिलक को कोई मिटा नहीं सकते। अब पूछते ऐसा निश्चय है? जो विजयी रतन है उनकी हर बात में विजय ही विजय है, उनकी हार हो नहीं सकती। हार तो बहुत जन्म खाते रहे, अब आकर विजयी बनने बाद फिर हार क्यों? सब कहते विजय हमारी ही है, ऐसा एक बल एक भरोसा हो। बच्चे यदि ज्ञान में नहीं चलती है तो क्या करें? वह कहते अगर कोई इस मार्ग में नहीं चल सकते हैं तो शादी करनी ही पड़े। उन्हों की कमजोरी भी अपने ऊपर से मिटानी है। साक्षी हो मजबूरी भी करना होता है, वह हुआ फर्ज। लगन नहीं है, फर्ज पालन करते हैं। एक होता है लगन से करना, एक होता है निमित्त फर्ज निभाना। अब कहते सभी आत्माओं का एक ही समय यह जन्मसिद्ध अधिकार लेने का पाठ नहीं है। परिचय मिलना तो जरूर है, पहचानना भी है, लेकिन कोई का पाठ अभी है, कोई का पीछे। बीजों में कोई झट से फल देता है, कोई देरी से फल देता है। वैसे ही यहाँ भी हर एक का अपने समय पर पाठ है, कोई देरी से फल देता है। वैसे ही बाबा कहते कि यहाँ भी हर एक का अपने समय का पाठ है। फर्ज समझ करेंगे तो माया का मर्ज नहीं मिलेगा, नहीं तो वायुमंडल का असर लग सकता है। इसलिए फर्ज समझ करना है। फर्ज और मर्ज में सिर्फ एक बिंदी का फर्क है, लेकिन बिंदी रूप में ना होने कारण फर्ज भी मर्ज हो जाता है। जो मददगार हैं उन्हों को मदद तो सदैव मिलती है। बाप की मदद हर कार्य में कैसे मिलती है, यह बाबा पूछते, अनुभव होता है। एक दो के विशेष गुण को देख एक दो को आगे रखना है। किसको आगे रखना, यह भी अपने को आगे बढ़ाना है। शिव जयंती पर आवाज फैलाना सहज होता है। जितनी हिम्मत हो उतना करो, क्योंकि फिर समय ऐसा आना है जो इस सर्विस के मौके भी कम मिलेंगे। इसलिए जितना कर सकते हो उतना करो। बाबा पूछते, भूलें क्यों होती हैं? उसकी गहराई में जाना है। अंतर्मुख हो सोचना चाहिए, यह भूल क्यों हुई, यह तो माया का रूप है ना, मैं तो रचयिता बाप का बच्चा हूँ। अपने साथ एकांत में ऐसे ऐसे बात करो, उभारने की कोशिश करो। कहाँ भी जाना होता है तो अपना यादगार छोड़ना होता है और कुछ ले जाना होता है, तो मधुबन में विशेष कौन सा यादगार छोड़ा। एक एक आत्मा के पास यह ईश्वरीय स्नेह और सहयोग का यादगार छोड़ना है। जितना एक दो के स्नेह सहयोगी बनते हैं, उतना ही माया के विघ्न हटाने में सहयोग मिलता है। बाबा कहते, सहयोग देना अर्थात सहयोग लेना। परिवार में आत्मिक स्नेह देना है और माया पर विजय पाने का सहयोग लेना है। परिवार में आत्मिक स्नेह देना है और माया पर विजय पाने का सहयोग लेना है, या लेन देन का हिसाब ठीक रहता है। इस संगम समय पर ही अनेक जन्मों का संबंध जोड़ना है। स्नेह है संबंध जोड़ने का साधन, जैसे कपड़े सिलाई करने का साधन धागा होता है, वैसे ही भविष्य संबंध जोड़ने का साधन है स्नेह रूपी धागा। जैसे यहाँ जोड़ेंगे वैसे वहाँ जूता हुआ मिलेगा। इसमें जुड़ा लिखना चाहिए था, जैसे यहाँ जोड़ेंगे वैसे वहाँ जुड़ा होना चाहिए, जुड़ा हुआ मिलेगा, जूता गलत लिखा। जैसे यहाँ जोड़ेंगे वैसे वहाँ जुड़ा हुआ मिलेगा। जोड़ने का समय और स्थान बाबा कहते यह है। ईश्वरीय स्नेह भी तब जुड़ सकता है जब अनेक के साथ स्नेह समाप्त हो जाता है। तो अब अनेक स्नेह समाप्त कर एक से स्नेह जोड़ना है। बाबा कहते वह अनेक स्नेह भी परेशान करने वाले हैं और यह एक स्नेह सदैव के लिए परिपक्व बनाने वाला है। अनेक तरफ से तोड़ना और एक तरफ जोड़ना है। बिना तोड़े कभी जुट नहीं सकता। अभी कमी को भी भर सकते हो, फिर भरने का समय खत्म। ऐसे समझ कर कदम को आगे बढ़ाना है। बाबा पूछते सभी पीर्व पुरुषार्थी हो वा पुरुषार्थी हो, पीर्व पुरुषार्थी के मन के संकल्प में भी हार नहीं हो सकती है। ऐसी स्थिति बनानी है जो संकल्प में भी माया से हार ना हो, इसको कहा जाता है पीर्व पुरुषार्थी। वे शुद्ध संकल्पों में पहले से ही मन को बिजी रखेंगे तो और संकल्प नहीं आएंगे। पूरा भरा हुआ होगा तो एक बूंद भी जास्ती पद नहीं सकेगी, नहीं तो बज जाएगा। बाबा कहते हैं पूरा भरा हुआ होगा तो एक बूंद भी जास्ती पड़ नहीं सकेगी, नहीं तो बच जाएगा। तो यही संकल्प मन में रहे जो व्यर्थ संकल्प आने का स्थान ही ना हो। जब घड़ा पूरा भरा होता है तो उसमें एक बूंद भी फालतू नहीं आ सकती, नहीं तो फिर वो गिर पड़ता है। इसी तरीके से अगर हम पूरी तरह से शुद्ध संकल्पों से भरे हैं, उसमें एक संकल्प भी व्यर्थ का नहीं आ सकता। बाबा का ये तात्पर्य है। आगे बाबा कहते तो यही संकल्प मन में रहे जो व्यर्थ संकल्प आने का स्थान ही ना हो। इतना अपने को बिजी रखो, मन को बिजी रखने के तरीके जो मिलते हैं वह आप पूरे प्रयोग में नहीं लाते हो, इसलिए व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं। एक तरफ बिजी रखने से दूसरी तरफ स्वयं छूट जाता है। बाबा कहते मंथन करने के लिए तो बहुत खजाना है, इसमें मन को बिजी रखना है। समय की रफ्तार तेज है व आप लोगों के पुरुषार्थ की रफ्तार तेज है। अगर समय तेज चल रहा है और पुरुषार्थ ढीला है तो उसके रिजल्ट क्या होगी? बाबा कहते समय निकल जाएगा आगे और पुरुषार्थी रह जाएंगे पीछे। समय की गाड़ी छूट जाएगी, सवार होने वाले रह जाएंगे। समय की कौन सी तेजी को देखते हो? बाबा कहते समय में बीती को बीती करने की तेजी है। वही बात को समय फिर कब रिपीट करता है? तो पुरुषार्थ की जो भी कमियां हैं उसमें बीती को बीती समझ आगे हर सेकंड में उन्नति को लाते जाओ तो समय के समान तेज चल सकते हो। समय तो रचना है ना, रचना में यह गुण है तो रचयिता में भी तो होना चाहिए। समय आगे बढ़ता जाता है, बीते हुए समय वापस नहीं आता। उसी तरह से हम भी आगे बढ़ते जाएं, बीती को पीछे छोड़ते जाएं। रचना में यह गुण है तो रचयिता में भी होना चाहिए। ड्रामा क्रिएशन है तो क्रिएटर के बच्चे आप हो ना, तो क्रिएटर के बच्चे क्रिएशन से ढीले क्यों? इसलिए सिर्फ एक बात का ध्यान रहे कि जैसे ड्रामा में हर सेकंड अथवा जो बात बीती जिस रूप से बीत गई वह फिर से रिपीट नहीं होगी, फिर रिपीट होगी 5000 वर्ष के बाद। वैसे ही कमजोरियों को बार बार रिपीट करते हो। अगर यह कमजोरियां रिपीट ना होने पाए तो फिर पुरुषार्थ तेज हो जाएगा। जब कमजोरी समेटी जाती है तब कमजोरी की जगह पर शक्ति भर जाती है। अगर कमजोरियां रिपीट होती रहती हैं तो शक्ति नहीं भरती है। इसलिए जो बीता सो बीता, कमजोरी की बीती हुई बातें फिर संकल्प में भी नहीं आनी चाहिए। अगर संकल्प चलते हैं तो वाणी और कर्म में आ जाते हैं, संकल्प में ही खत्म कर देंगे तो वाणी कर्म में नहीं आएंगे। फिर मन वाणी कर्म तीनों शक्तिशाली हो जाएंगे। बाबा कहते बुरी चीज को सदैव फौरन ही फेंका जाता है, अच्छी चीज का प्रयोग किया जाता है तो बुरी बातों को ऐसे फेंको जैसे बुरी चीज को फेंका जाता है। फिर समय पुरुषार्थ से तेज नहीं जाएगा। समय का इंतजार आप करेंगे तो हम तैयार बैठे हैं। समय आए तो हम जाएं, ऐसी स्थिति हो जाएगी। अगर अपनी तैयारी नहीं होती है तो फिर सोचा जाता है कि समय थोड़ा हमारे लिए रुक जाएगा। बाबा कहते बांधेली का योग तेज होता है, क्योंकि जिस बात से कोई रोकते हैं तो बुद्धि जरूर उस तरफ लगी रहती है। घर बैठे भी चरित्रों का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन ऐसी लगन चाहिए। जब ऐसी लगन अवस्था हो जाएगी तो फिर बंधन कट जाएंगे। एक की याद ही अनेक बंधन को तोड़ने वाली है। एक से जोड़ना है, अनेक से तोड़ना है। एक बाप के सिवाय दूसरा ना कोई। जब ऐसी अवस्था हो जाएगी फिर यह बंधन आदि सभी खत्म हो जाएंगे। जितना अटूट स्नेह होगा उतना ही अटूट बाबा कहते संयोग मिलेगा। संयोग नहीं मिलता इसका कारण स्नेह में कमी है। अटूट स्नेह रख करके अटूट संयोग को प्राप्त करना है। कल पहले का अपना अधिकार लेने लिए फिर से पहुंच गए हो ऐसा समझते हो। वह स्मृति आती है कि हम ही कल्प पहले थे, अभी भी फिर से हम ही निमित्त बनेंगे। जिसको यह नशा रहता है उनके चेहरे में खुशी और ज्योति रूप देखने में आता है। उनके चेहरे में अलौकिक अव्यक्त चमक रहती है। उनके नैनों से मुख से सदा खुशी ही खुशी देखेंगे। देखने वाला भी अपना दुख भूल जाए। जब कोई दुखी आत्मा होती है तो अपने को खुशी में लाने के लिए खुशी के साधन बनाती है ना? तो दर्पण में चेहरा देखने में आए, तुम्हारे चेहरे से सर्विस हो ना, बोलते हुए आपका मुख सर्विस करे। तब कहते आजकल दुनिया में अपने चेहरे को ही श्रृंगारते हैं ना, तो आप सभी आत्माओं का भी ऐसा श्रृंगारा हुआ मुंह देखने में आए। सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे हैं, फिर शक्ति ना आए यह कैसे हो सकता है? जरूर बुद्धि की तार में कमी है। तार को जोड़ने के लिए जो युक्तियां मिलती हैं उसको अभ्यास में लाओ। तोड़ने बगैर जोड़ लेते हैं तो पूरा फिर जुटता नहीं। थोड़े समय के लिए जुटता फिर टूट जाता है। बाबा कहते इसलिए अनेक तरफ से तोड़कर एक तरफ जोड़ना है। इसके लिए संग भी चाहिए और अटेंशन भी चाहिए। हर कदम पर संकल्प पर अटेंशन। संकल्प जो उठता है ना वह चेक करो कि यह हमारा संकल्प यथार्थ है भी या नहीं। इतना अटेंशन जब संकल्प पर हो तब वाणी भी ठीक और कर्म भी ठीक रहे। संकल्प और समय दोनों ही संगम युग के विशेष खजाने हैं, जिससे बहुत कमाई कर सकते हो। जैसे स्थूल धन को सोच समझकर प्रयोग करते हैं कि एक पैसा भी व्यर्थ न जाए, वैसे ही यह संगम का समय और संकल्प व्यर्थ न जाए। अगर संकल्प पावरफुल है तो अपने ही संकल्प के आधार पर अपने लिए सतयुगी सृष्टि लाएंगे। अपने ही संकल्प कमजोर है तो अपने लिए त्रेतायुगी सृष्टि लाते हैं। यह खजाना बाबा कहते सारे कल्प में फिर नहीं मिलेगा। तो जो मुश्किल से एक ही समय पर मिलने वाली चीज है उसका कितना मूल्य रखना चाहिए? अभी जो बना सो बना, फिर बने हुए को देखना पड़ेगा। बना नहीं सकेंगे, अभी बना सकते हो उसका बाबा कहते अब थोड़ा समय है, दूसरों को तो कहते हो बहुत गई थोड़ी रही, लेकिन अपने साथ भी ये बात लगाते हो, समय थोड़ा रहा है लेकिन काम बहुत करना है। अब कहते अपने आप से दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि आज से फिर यह बातें कभी नहीं रहेंगी, यह संसार अपने में फिर इमर्ज नहीं होने देंगे, यह व्यर्थ संकल्प कभी भी उत्पन्न नहीं होने देंगे। जब ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे तभी प्रत्यक्ष फल मिलेगा। अब दिन बदलते जाते हैं तो खुद को भी बदलना है। अब ढीले पुरुषार्थ के दिन चले गए, अब है तीव्र पुरुषार्थ करने का समय। अब कहते तीव्र पुरुषार्थ के समय अगर कोई ढीला पुरुषार्थ करे तो क्या कहेंगे, इसलिए अब होश में आओ, बार बार बेहोश ना हो। संजीवनी बूटी साथ में रख सदैव होश में रहो। बाकी हाँ करेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे, यह अक्षर अभी ना निकले, ऐसी बातें बहुत समय सुनी। अब बाप दादा यही सुनना चाहते हैं कि हाँ बाबा करके दिखाएंगे। बाबा कहते अपने चलन में अलौकिकता लाओ तो चलन की आकर्षण लौकिक संबंधियों आदि को भी स्वयं खींचेगी। लौकिक संबंध में वाणी काम नहीं करती, चलन की आकर्षण होगी। तो अब बहुत तेज से चलना है, अभी ऐसा बदल कर दिखाओ जो सभी के आगे एग्जाम्पल बनो। अब एक सेकंड भी बाबा कहते गंवाना नहीं है, चेक आप कर सकते हो। अब समय बहुत थोड़ा रह गया है, समय भी बेहद की वैराग्य वृत्ति को उत्पन्न करता है, लेकिन समय के पहले जो अपनी मेहनत से करेंगे तो उनका फल ज्यादा मिलेगा। जो खुद नहीं कर सकेंगे उन्हों के लिए समय हेल्प करेगा, लेकिन वह समय की बलिहारी होगी अपनी नहीं। बाबा पूछते हैं कितनी बार बाप दादा से मिले हुए हो, यह स्मृति में है कि अनेक बार, यह जन्म सिद्ध अधिकार मिला है, कितना बड़ा अधिकार है जो कई प्रयत्नों से भी नहीं प्राप्त हो सकता, यह सहज ही प्राप्त हो रहा है, ऐसा अनुभव किया है। समय बाकी कितना है और पुरुषार्थ क्या किया है, दोनों की परख है। बाबा कहते समय कम है और पुरुषार्थ बहुत करना है। जब कोई स्टूडेंट लाइफ टाइम पर आखिरी में दाखिल होते हैं तो वह, बाबा कहते जब लास्ट में जब आखिर में दाखिल होते हैं तो वह थोड़े समय में कितनी मेहनत करते हैं। जितना समय तेज जा रहा है इतना तेज पुरुषार्थ है। कब शब्द निकाल ही देना है, जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं वह कब शब्द नहीं बोलते, अब बोलेंगे, अब से करेंगे। यह संगम समय का एक सेकंड भी कितना बड़ा मूल्यवान है, एक सेकंड भी व्यर्थ गया तो कितनी कमाई व्यर्थ हो जाएगी। पूरे कल्प की तकदीर बनाने का यह थोड़ा समय है, एक सेकंड पद्मों की कमाई करने वाला भी है और एक सेकंड में पद्मों की कमाई गंवाते भी हैं। एक समय बाबा कहते पद्मों की एक सेकंड में कमाई होती भी और गंवाई भी जाती, इतनी वैल्यू एक सेकंड की है। ऐसे समय को परख करके फिर पांव तेज करो, समस्याएं तो बनती रहेंगी। स्थिति इतनी पावरफुल हो जो परिस्थितियां स्थिति से बदल जाए, परिस्थिति के आधार पर स्थिति ना हो। स्थिति परिस्थिति को बदल सकती है क्योंकि सर्वशक्तिमान के संतान हो, तो क्या ईश्वरीय शक्ति परिस्थिति नहीं बदल सकती। रचयिता के बच्चे रचना को नहीं बदल सकते हैं। अब पूछते रचना पावरफुल होती है व रचयिता, रचयिता के बच्चे रचना के अधीन कैसे होंगे? अधिकार रखना है ना कि अधीन होना है। जितना अधिकार रखेंगे उतना परिस्थितियां भी बदल जाएंगी। अगर उनके पीछे पड़ते रहेंगे तो और ही सामना करेंगी। परिस्थितियों के पीछे पड़ना ऐसे है जैसे कोई अपनी परछाई को पकड़ने से वह हाथ आती है क्या, और ही आगे बढ़ती है तो उसको छोड़ दो। वायुमंडल को बदलना यह तो बहुत सहज है। इतनी छोटी सी अगरबत्ती, खुशबू की चीज भी वायुमंडल को बदल सकती है। तो ज्ञान की शक्ति से वायुमंडल को नहीं बदल सकते हो। यह ध्यान रखना है कि वायुमंडल को सदैव शुद्ध रखना है। लोग क्या भी बोले, जिस बात में अपनी लगन नहीं होती है तो वह बात सुनते हुए जैसे नहीं सुनी जाती। तन भाले वहाँ हो लेकिन मन नहीं, ऐसे तो कई बार होता है। मन कोई और तरफ होता है और वहाँ बैठे भी जैसे नहीं बैठते हैं। तन से साथ देना पड़ता है लेकिन मन से नहीं। उसके लिए सिर्फ अटेंशन देना होता है। जब तक हिम्मत ना रख पाओ नहीं रखा है तो बाबा कहते ऊंची मंजिल लगेगी क्या। अगर पाँव रखेंगे तो फिर लिफ्ट की तरफ झट पहुंच जाएंगे। हिम्मत रखो तो चढ़ाई भी लिफ्ट बन जाएगी। तो हिम्मत का पाँव रखो, कर सकते हो। सिर्फ लोक लाज का त्याग और हिम्मत की धारणा चाहिए। बाबा कहते एक दो का सहयोग भी बड़ी लिफ्ट है। परिस्थितियां तो आएंगी लेकिन अपनी स्थिति पावरफुल चाहिए। फिर जैसा समय वैसा तरीका भी टच होगा। अगर समय प्रमाण युक्ति नहीं आती है तो समझना चाहिए योग बल नहीं है। योग युक्त है तो मदद भी जरूर मिलती है। जो यथार्थ पुरुषार्थी हैं उनके पुरुषार्थ में इतनी पावर रहती है, ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। अनेक तरफ लगाव है फिर माया की अग्नि भी लग जाती है, परंतु लगाव नहीं होना चाहिए। फर्ज तो निभाना है लेकिन उसमें लगाव ना हो। ऐसा पावरफुल रहना है जो औरों के आगे एग्जाम्पल हो। बाबा कहते हैं जो एग्जाम्पल बनते हैं वह एग्जाम में पास होते हैं। एग्जाम देने के लिए एग्जाम्पल बन दिखाओ, जो सभी देखें कि ये कैसे नवीनता में आ गए हैं। ऐसे सर्विसेबल बनना है जो आपको देख औरों को प्रेरणा मिले। पहले जो शक्तियां निकली उन्होंने इतनी शक्तियों को निकाला। आप शक्तियां फिर सृष्टि को बदलो, इतना आगे जाना है। गीत भी है ना, हम शक्तियां दुनिया को बदल कर दिखाएंगे। सृष्टि को कौन बदलेंगे? जो पहले खुद को बदलेंगे। शक्तियों की सवारी शेर पर दिखाते हैं। बाबा पूछते कौन सा शेर? यह माया जो शेरनी रूप में सामना करने आती है उनको अपने अधीन कर सवारी करना, अर्थात उनकी शक्ति को खत्म करना। ऐसी शक्तियाँ जिनकी शेर पर सवारी दिखाते हैं वही तुम हो ना। वह सभी का ही चित्र है। ऐसी शेरनी शक्तियाँ कभी माया से घबराती नहीं लेकिन माया उनसे घबराती है। बाबा पूछते ऐसे माया जीत बने हो? शक्ति बिगर बंधन नहीं टूटेंगे, शक्ति बिगर बंधन नहीं टूटेंगे। याद की शक्ति है एक बाप दूसरा न कोई। ऐसा सौभाग्य कोटों में कोई को मिलता है। इतना पदमा पदम भाग्यशाली अपने को समझते हो? बाबा कहते शक्ति दल बहुत कमाल कर सकता है। जो हड्डी सेवा करने वाले होते हैं उनको बाप भी मदद करते हैं। जो स्नेही है उनसे बाप भी स्नेही रहता है। पाप के भी वही बच्चे सामने रहते हैं। भला कोई कितना भी दूर हो लेकिन बाप दादा के दिल के नजदीक है। सभी से अच्छी सौगात है अपने इस चेहरे को सदैव हर्षित बनाना। कोई भी कभी भी परेशानी की रेखा न लाए। जैसे संपूर्ण चंद्रमा कितना सुंदर लगता है वैसे अपना चेहरा सदैव हर्षित रहे। चेहरा ऐसा चमकता हुआ हो जो और भी आपके चेहरे में अपना रूप देख सके। चेहरा दर्पण बन जाए। अब कहते अनेक आत्माओं को अपना मुखड़ा दिखलाना है। अभी पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है, महादानी बनना है। रहम दिल बाप के बच्चे सर्व आत्माओं पर रहम करना है। इस रहम की भावना से कैसी भी आत्माएं बदल सकती हैं। तो सारे दिन में यह चेक करो कि कितने रहम दिल बने हैं, कितनी आत्माओं पर रहम किया है। इस रहम की भावना से कैसी भी आत्मा बदल सकती है। बाबा कहते दूसरों को सुख देने में भी अपने में सुख भरना है। देना अर्थात लेना। दूसरों को सुख देने से खुद भी सुख स्वरूप बनेंगे, कोई विघ्न नहीं आएंगे। दान करने से शक्ति मिलती है। अंधों को आंखें देना कितना महान कार्य है। आप सभी का यही कार्य है अज्ञानी अंधों को ज्ञान नेत्र देना। और अपनी अवस्था सदैव अचल हो। तुम बच्चों की स्थिति का ही यह अचल घर यादगार है। जैसे बाप दादा एक रस रहते हैं वैसे बच्चों को भी एक रस रहना है। जब एक के ही रस में रहेंगे तो एक रस अवस्था में भी रहेंगे। अच्छा ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।